सफ़ा नंबर 353। इसके अलावा इकबाल ने अपनी मिली शायरी के इब्तदाई मरहल ही में बाद नज़मों में ऐसे उलमा को तस्दीक का निशाना बनाया था, क्योंकि इनके नज़दीक कम इलम मुलाओं का तबका हिंदुस्तान में इस्लामी तरक्की को जोफ पहुँचा रहा था। जिस ज़माने में तारीख़ के खिलाफ ज़ोरों पर थी और हिंदुस्तान के बेशतर उलमा हिंदुओं के साथ मिलकर तुर्क मवालात की तहरीक में हिस्सा ले रहे थे, इकबाल ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर को बंद रखने और तलबा को अदम तावन के लिए तैयार करने के सिलसिला में कांग्रेसी जहनीयत रखने वाले उलमा से इख्तलाफ किया था। बाद में जब सुल्तान इबन सऊद की ततहीर इजहाज के सिलसिला में हिंदुस्तान के उलमा दो ग्रोहों में बट गए और सुल्तान इबन सऊद के हामियों और मुखालफों के दरमियान कश्मकश शुरू हुई और दोनों तरफ के उलमा ने तकफीर का हंगामा बर्पा किया, तो इकबाल ने सुल्तान इबन सऊद की हमायत में बयान दे दिया। इकबाल के मुखालफ उलमा इनसे पहले ही खार खाए बैठे थे। नतीजा ये हुआ कि मौलवी अबू मोहम्मद दीदार अली खतीब मस्जिद वजीर खान लाहौर ने इकबाल के खिलाफ कुफर का फतवा सादर कर दिया। अब्दुल मजीद सालक तहरीर करते हैं कि इस फतवे पर मुल्क भर में शोर मच गया। मौलवी दीदार अली पर हर तरह से तहन व मलामत की बुछाड़ हुई। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने जिम्मेदार में इस जहलाना फतवे की छताड़ कर दी। खुद जिम्मेदार ने फतवा पर तबसरा किया। मौलवी दीदार अली की इस हरकत से उलमाए इस्लाम के इज्तमाई वकार को सख्त सदमा पहुँचा, क्योंकि मुसलमानों के तमाम तबकात आलम व आमी कदीम तलीम याफ्ता और जदीद पढ़े हुए लोग इलामा इकबाल को नहायत मुखलस मुसलमान आशिक रसूल दर्दमंद मिल्लत हामी दीन इस्लाम तस्लीम करते थे और कहते थे कि अगर उलमा के नज़दीक इकबाल जैसा मुसलमान भी काफर है तो फिर मुसलमान कौन है। बहरहाल कांग्रेसी जहनीयत रखने वाले उलमा का इकबाल से तनाज़ा ख़त्म ना हुआ। इनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद माह में जब कौम मिल्लत की तोज़ी के मसले पर इनका मौलाना हुसैन अहमद मदनी से इख्तलाफ हुआ तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के हामियों ने गुमनाम खतूत के ज़रिए ऐसे ही इल्ज़ामात इकबाल पर लगाए। बाद में जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक अखबारी मजमून में अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए तस्लीम कर लिया कि उन्होंने मुसलमान हिंद को जदीद नज़रिया कौमियत से अख्तियार करने का मशवरा नहीं दिया, तो इकबाल ने ऐलान किया कि इन्हीं मौलाना हुसैन अहमद मदनी के इस एतराफ़ के बाद किसी किस्म का हक इन पर इतराज़ करने का नहीं रहता। इकबाल ने अपने ऐलान में मजीद कहा कि मैं मौलाना के अकीदतमंदों के जोश अकीदत की कदर करता हूँ, जिन्होंने एक दिनी उम्र की तौज़ीह के सिलसिले में प्राइवेट खतूत और पब्लिक तहरीरों में मुझे गालियाँ दीं। खुदा ताला इनको मौलाना की सोहबत से ज़्यादा मुस्तफीद करे। सो कांग्रेसी जहनीयत रखने वाले उलमा और इनके हामियों के लिए चूँकि इकबाल के मौक़िफ़ को बातल साबित करना मुमकिन ना था, इसलिए इन्होंने इकबाल की ज़ात पर बेदराय कीचड़ उछाला। इन बदतौफ़ीकों के प्रोपेगंडे के ज़ेर असर और मुअसराना चश्मक के नतीजे में मजलिस अहरार के कायद अताउल्लाह शाह बुखारी ने भी इकबाल के मुतलक फ़ैसला दे दिया कि इकबाल का कलम तो तमाम उम्र सही रहा लेकिन कदम अक्सर व बेशतर गलत। इकबाल के मुखालफीन में तीसरा ग्रोह अहमदी अकीदा रखने वालों का था। इकबाल की यूरोप से वापसी पर पंजाब में अहमदी तरीक का चर्चा था। उन्होंने अहमदी तरीक का मुतालिया किया लेकिन इस मुतालिया के बावजूद शुरू शुरू में इस तरीक से अपनी बेजारी का वो इजहार नहीं किया जो बाद में उन्होंने नज़म व नसर दोनों में शिद्दत के साथ किया। 1910 में अपने एक अंग्रेज़ी खुतबा ब अनवान मुस्लिम कम्युनिटी एक मुआशरती मुतालिया में जो अलीगढ़ में दिया गया था, इकबाल ने एक मुकाम पर कादियानी फ़िरके को पंजाब में खालिस्तन मुस्लिम तर्ज के किरदार का ताकतवर मज़र बयान किया। आमदियों की शुरू ही से कोशिश थी कि किसी न किसी तरह इकबाल जैसी गैर मामूली काबिलियत की हामिल शख्सियत को अहमदी मज़हब कबूल कर लेने के लिए रजामंद किया जाए। चुनचा इनमें से एक इकबाल को जानने वाले किसी शख्स ने इन्हीं बैत का पैगाम भेजा लेकिन इकबाल ने अपने मंजूम जवाब में ऐसा करने से माजरत की। इसके बाद अहमदियों के एक अखबार ने खबर वाजे करके शाया कर दी कि इकबाल ने अहमदी अकीदा रखने वाले एक ख़ानदान की लड़की से शादी कर ली है। इस पर इकबाल ने इस खबर की तरदीद में एक बयान दिया कि इन्होंने ऐसी कोई शादी नहीं की बल्कि जिस किसी ने भी ये शादी की है वो कई और डॉक्टर इकबाल होंगे। जब अहमदियों का अपने मकासद में कामयाबी हासिल ना हुई तो उन्होंने इकबाल को नापसंदीदगी की निगाह से देखना शुरू कर दिया, मगर जब इकबाल ने अहमदी तरीक से बेजारी का इजहार खुल कर किया, अहमदियों के कायद को इस्लाम के मुनाफी साबित करके इन्हीं मिल्लत इस्लामिया से खारिज गर्दाना और अंग्रेज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें अलहदा अकलीत करार दिया जाए तो वो इनका दुश्मन होगा, और इन्होंने इकबाल की करदार कशी को अपना अशार बना लिया। इकबाल के मुखालफीन में चौथा ग्रोह मशाइख का था। इकबाल माजी के सूफिया कराम की बड़ी इज्जत करते थे और इनकी रूहानी तलीमात नीज हिंदुस्तान में अशात तबलीग इस्लाम के सिलसिले में इनकी खिदमत की अजमत के मुतारफ़ थे। वो अक्सर रूहानी फायज़ के असूल की खातर बाद दरगाहों पर भी जाते। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब उलाही, हज़रत शेख अहमद सरहिंदी, मुजद्दद अलफसानी, हज़रत अली हजवेरी, दाता गंजबख्श इनके महबूब सूफिया में से थे, लेकिन हम असर पीरों और दरवेशों में से अक्सरियत को मुसलमान के अहद तनज़ल की यादगारें समझते थे, और इनकी नाअहली अदात व खसाइल और तौर तरीक़ों के सबब इन्हीं अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहते थे। इसरार खुदी के पहले एडिशन में इकबाल ने मुसलमानों पर यह वादे करने के लिए कि किस किस्म की अदबियात के मुताले से कौमों में खुदी या खुददारी पैदा होती है, ख्वाजा हाफिज शिराजी की तरीमात पर तबसरा करते हुए नहीं गोस फनदान कदीम के ग्रोह में शामिल कर दिया। हाफिज के मतलब क्योंकि सूफिया के हल्के में एक खास तकदस का अकीदा मौजूद था, इस वजह से इसरार खुदी की अशात के बाद इकबाल पर इतराजात की बुछाड़ होने लगी और इन्हें तसूफ का मुखालफ और सूफिया कराम की रूहानी तलीमत का दुश्मन करार दिया गया। इकबाल के मुखालफिन में पांचवा ग्रोह बल्शोविक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ख्यालात रखने वालों का था। इस ग्रोह की एक शाख ने बाद में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सुरख्त अख्तियार कर ली। खिजर रा और प्याम मशरक की अशात के बाद इश्तराकी ख्यालात की तबलीग करने वाले किसी अखबार ने लिखा कि इकबाल यकीनन एक इश्तराकी ही नहीं बल्कि इश्तराकियत के मुबल्लग आला हैं। इसकी तरदीद में इकबाल ने जिम्मेदार में अपना एक खत बअर्ज अशाया अशात भेजा, जिसमें तहरीर किया कि वो मुसलमान हैं, उनका अकीदा है कि इंसानी जमातों की इक्तसादी अमराज का बेहतरीन इलाज कुरान ने तजवीज़ किया और इनके नज़दीक इश्तराकी ख्यालात रखना दायरा इस्लाम से खारिज होने के मुतरादफ है। लिहाजा हिंदुस्तान के सोशलिस्ट और इनके हामी तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने इनकी ज़ात पर कीचड़ उछालने लगे। इन्होंने न सिर्फ इकबाल के खिलाफ फरसूदा इल्ज़ाम की तशहीर की बल्कि बाद में एक नए इल्ज़ाम का इजाफा भी कर दिया कि इकबाल बरतानवी अस्तमार के गुमाश्ते हैं और अंग्रेज़ के इशारे पर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कराने के दर पे हैं। इकबाल के मुखालफीन का छठा ग्रोह मुख्तलिफ किस्म के अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें से बाज़ तो इकबाल के अपने अहबाब थे जो बज़ाहिर इनके अकीदत मंद थे, लेकिन हसद की बिना पर या अपने ज़ाती अगराज के असूल की खातर अंग्रेज़ हाकमों से इनकी शिकायतें करते या इनके मुतलक तरह तरह के बुतान तराशते रहते थे। इसी ग्रोह में सर शादी लाल जैसे पंजाब के मोहतसब हिंदू भी शामिल थे, जो किसी भी मुकाबले मुसलमान को ज़िंदगी में तरक्की करते देखना गवारा ना कर सकते थे। अंग्रेज़ हाकमों ने इकबाल की अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए निसार का खिताब दिया और हिंदुस्तान के आइंदा दस्तूर में मुसलमानों की मिली तशख्स की हफाजत करने वाले कायदीन में से इन्हीं एक मुमताज़ कायद तस्लीम करते हुए दो मरतबा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के इजलासों में शिरकत के लिए भी नामजद किया, लेकिन वो इकबाल को हमेशा शुबे की नज़र से देखते थे। इनमें मेल मिलाप रखने वालों पर निगाह रखी जाती थी, बल्कि मुलाकातियों के साथ इनकी गुफ्तगू की तफसील भी हुकूमत तक पहुंचती रहती थी। इकबाल के मुखालफीन की निशानदेही से ये बतलाना मकसूद था कि जब दलायल व बुराहीन से किसी काबिल शख्सियत के अकवाल को जुटलाना मुश्किल हो तो इंसानी फितरत के मुताबिक आसान तरीका यही है कि मुखालफ की किरदार कशी का रास्ता अख्तियार किया जाए। इकबाल की किरदार कशी की मुहिम का आगाज़ कब हुआ, इस सिलसिले में राकम ने इकबाल के चंद पुराने जानने वालों से रजू किया। मियाँ एम असलम के ख्याल में तुर्क मवालात की तारीख से बेशतर इकबाल के बारे में कोई भी बतान इन्होंने नहीं सुना था, इसलिए इनकी राय के मुताबिक इकबाल की किरदार कशी की मुहिम का आगाज़ 1920 के बाद हुआ। मियाँ अमीरुद्दीन भी इसकी तायद करते हैं। एम मियाँ एम असलम के वालिद मियाँ निज़ामुद्दीन से इकबाल के गहरे मरासम थे और मियाँ एम असलम खुद भी 1909 में गवर्नमेंट कॉलेज के तालिबे इल्म होने की हैसियत से इकबाल के शिगिर्दों में से थे। इस एतबार से राकम के नज़दीक इनकी राय मुस्तनद है। अलबत्ता ये बात तय है कि इकबाल की किरदार कशी की मुहिम का आगाज़ कांग्रेसी जहनीत रखने वाले उलमा और इनके हामियों ने किया और बाद में कम इलम या तंग नज़र मुल्ला अहद तनज़ल की शायरी के प्रस्तार अहल सिखन अहमदी सोशलिस्ट तरक्की पसंद मुसन्निफीन मुरवज्जा सूफी सलासल के मुहाफ़िज़ मशाइख इकबाल के मुनाफ़िक़ और अहकाम रस अहबाब पंजाब के बाद मोहतसब हिंदू और दीगर अफराद बाकदर हिम्मत इस मुहिम में शामिल होते चले गए। अपने मतलब इकबाल खुद किस हद तक ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम की तशहीर के ज़िम्मेदार थे, इसकी तफसील में जाने के लिए इकबाल के अदात व खसाइल पर निगाह रखना ज़रूरी है। इन्हीं बचपन ही से सोमो सलात का पाबंद रहने और हर रोज़ सुबह खुशहालानी से कुरान मजीद की तलावत करने की तरबियत दी गई थी। ज़रा बड़े हुए तो वालिद की तलकीद में तहज्जुद पढ़ने की आदत पड़ गई और शब के आखिरी हिस्से में बेदार होने के सबब इनका रात का खाना भी छूट गया। जब लाहौर आए तो शब बेदारी की आदत कायम रही। अमूमन सुबह की नमाज बड़े खशु खसाइस के साथ पढ़ते और नमाज के बाद खुश अलहानी से कुरान मजीद की तलावत किया करते। एक मुद्दत तक शब का खाना ना खाने की वजह से इन्हें रात को भूख ही ना लगती, सिर्फ नमकीन कश्मीरी चाय की एक आध प्याली पी लिया करते। महाराजा किशन प्रसाद को अपने एक खत मुहर्रा 31 अक्टूबर 1912 में अपनी इस आदत की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि सुबह 4 बजे 3 कभी 3 बजे उठता हूँ, फिर इसके बाद नहीं सोता सिवाय इसके के मसल्ले पर कभी ऊँग जाऊँ। उनका बेशतर कलाम शब के आखिरी हिस्से के सुकून ही में मरतब हुआ। मस्जिद में ईदैन की नमाज पढ़ने ज़रूर जाते थे, वरना आम नमाज पढ़ते तो तखलिये में। इकबाल को जवानी में कुछ अरसे तक वर्जिश करने या अखाड़े में उतर कर कुश्ती लड़ने का शौक रहा और वो बाज़ाहिर तंदुरुस्त दिखाई देते थे, लेकिन 30-35 बरस की उम्र से इन्हीं दर्द गुर्दा और नकरस जैसे अवारज लाहक होने शुरू हो गए थे और सेहत ख़राब रहने लगी। वैसे भी बड़े सहल मिजाज थे, जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त ना होती थी। अली बख्श रावी हैं सफ़ा नंबर 359 के, एक दफ़ा अनारकली वाले मकान में इनके पाँव पर भीड़ ने काट लिया। आपने इस कदर शिद्दत का दर्द महसूस किया कि पाँव बिस्तर से ना नीचे लटकाते थे। ताअंका किसी डॉक्टर को फौरी तौर पर बुलवाया गया और इसे 3200 रुपये फीस अदा की, लेकिन तकलीफ अपने वक्त पर ही ख़त्म हुई। रोज़ा कभी कभार रखते थे और जब रखते तो हर 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे बाद अली बख्श को बुलवा कर पूछते कि अफ्तारी में कितना वक्त बाकी है। बहरहाल ये हकीकत है कि इकबाल को शायद ज़राफ़त तबी के सबब पारसाई की बजाय अपने ज़िंदगी की तशहीर करने में ज़्यादा लुत्फ़ आता था। मसलन अनारकली वाले मकान में एक रोज़ जब वो दीन मोहम्मद दीन फौक इनसे मिलने गया तो इकबाल किताबों की अलमारी के पास खड़े किताबों को इस तरह टटोल रहे थे गोया किसी खास किताब की तलाश है। फौक ने कुछ देर तक इंतज़ार किया, फिर बेचैनी से पूछा किस चीज़ की तलाश हो रही है। जवाब दिया अंगूरी शराब की एक बोतल रखी थी, कल शम्सुल उलमा मुफ्ती अब्दुल्ला टोंकी आए थे, देख रहा हूँ कहीं वो ना ले गए हों। इसी तरह मियाँ शाहदीन ने अपने घर में एक अजीम और शान दावत का अहतमाम किया और दस्तूर के मुताबिक इसमें अंग्रेज मेहमानों के लिए अलहदा किसी कमरा में शराब का बंदोबस्त भी कर दिया। मियाँ शाहदीन मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, जब इकबाल और मिर्ज़ा जलालुद्दीन से मुलाकात हुई तो इज़रा मज़ाक का तुम लोगों के लिए अलग इंतजाम कर रखा है। इस पर इकबाल बर्जस्ता बोल उठे, मियाँ साहब हमने आपसे 2 बातें सीखी हैं, एक छुप कर पीना, दूसरा किसी को चंदा ना देना। महाराजा किशन प्रसाद के साथ इकबाल की खतो कताबत अमूमन संजीदा अमूर या शेर व शायरी के बारे में होती थी, लेकिन बाज़ औक़ात वह इसमें भी मजाक का पहलू निकाल देते। एक मरतबा महाराजा किशन प्रसाद ने बहाली सेहत के लिए इन्हीं किसी कुश्ते का नुस्खा तजवीज़ किया। इकबाल ने अपने ख़त मुहर्रा 30 दिसंबर 1915 में इन्हीं जवाब दिया, सफ़ा नंबर 360, मेरी सेहत आम तौर पर अच्छी नहीं रहती, कोई ना कोई शिकायत दामनगीर रहती है, दुआ पर मुझे चंदा एतबार नहीं, वर्दश से गुरेज है। इस वास्ते ये फैसला कर बैठा हूँ कि चलो अगर मुकर्रर वक़्त से कुछ अर्सा पहले रुखसत हो गया तो क्या मज़ायका है। मेरे दोस्त डॉक्टर कहते हैं कि वर्जिश वगैरह से उम्र में इजाफा होगा, मगर मेरा जवाब यही होता है कि 10 साल पहले क्या और पीछे क्या, आखिर रुखसत होना है तो क्यों ना दवा और वर्जिश का सर दर्द खरीदा जाए। सरकार ने जो नुस्खा मेरे लिए तजवीज़ फरमाया है ज़रूर मुफीद होगा, क्योंकि मजरब है और मुझे इसके इस्तेमाल की ख्वाहिश भी बहुत है, मगर निरी ख्वाहिश से काम नहीं चलता, इस्तेमाल के वसाइल ज़रूरी हैं। और मफकूद एक मतरबा पंजाब में रहती है, मैंने इससे कभी देखा नहीं मगर सुना जाता है कि हुसन में लाजवाब है और अपने गुज़िश्ता अमाल से तायब होकर पर्दा नशीनी की ज़िंदगी बसर करती है। चंद रोज़ हुए इसका ख़त मुझे वसूल हुआ कि मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी नज़म की वजह से तुमसे गायबाना प्यार रखती हूँ और मेरी तो तौबा को ठिकाने लगा दो, दिल तो यही चाहता है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लूँ मगर कमर में ताकत ही निरी काफ़ी नहीं, इसके लिए दीगर वसाइल भी ज़रूरी हैं, मजबूरन महजबाना इनकार करना पड़ा। अब बताइए कि आपका नुस्खा कैसे इस्तेमाल में आएगा, मगर मैं आपकी विलायत का कायल हूँ कि आपने ऐसे वक्त में ये नुस्खा तजवीज़ फरमाया कि मरीज़ की तबीयत खुद ब खुद उधर मायल थी। नुस्खा मुझे दिल से पसंद है मगर इसको किसी और वक्त पर इस्तेमाल में लाऊंगा जब हालात ज़्यादा मुसाद होंगे, फ़िलहाल सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना अब्दुल आला मदूदी ने अपने एक मजमून में जो 1938 में वफात इकबाल के बाद रसाला जौहर दिल्ली में शाया हुआ, इकबाल की शख्सियत के इसी पहलू के बारे में तहरीर किया। इकबाल के मतलब आम ख्याल ये है कि वो फ़कत एतकादी मुसलमान थे, अमल से उनको कुछ सरोकार ना था। इस बदगुमानी के पैदा करने में खुद इनकी उफ्ताद तबीयत का भी बहुत कुछ दखल था। इनमें कुछ फ़र्का मलामियत के से मिलानात थे जिनकी बिना पर अपनी रंदी के इश्तहार देने में इन्हें कुछ मज़ा आता था, वरना दर हकीकत वह इतने बामल ना थे। कुरान मजीद के तलावत से इनको खासा शगफ था और सुबह के वक्त बड़ी खुश अलहानी के साथ पढ़ा करते थे, मगर अखीर ज़माने में तबीयत की रक्त का ये हाल हो गया कि तलावत के दौरान में रोते रोते हिचकियाँ बन जाती थी और मसल पढ़ ही ना पा सकते थे। नमाज भी बड़े खशू खसूस के से पढ़ते थे, मगर छुप कर। जाहिर में यही ऐलान था कि निरा गुफ्तार का गाजी हूँ। इकबाल की तबीयत में हाजिर जवाबी बजला सखनी और ज़राफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी, और इनकी अलामत बचपन ही में जाहिर हो गई थी। मसलन स्कूल में देर से पहुँचते, उस्ताद ने पूछा कि देर से क्यों आयो, जवाब दिया इकबाल देर ही से आता है वगैरह। कॉलेज के एग्जाम में भी फुफ्ती ज़बरदस्त कसते थे। इब्तदाई 5 साल मुलाजमत के दौरान जब इन्होंने अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसों में अपनी मिली शायरी की बुनियाद रखी, तो कम इलम मुल्लाओं और पेशावर पीरों को अपनी तंज का निशाना बनाया। इनकी नज़में जहद व रंदी और दीनो दुनिया इसी अहद की यादगार हैं। दीनो दुनिया में तो बाज़ ज़रीफ़ाना इशारे ऐसे थे जिन्हें चंद लोगों ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया, और यूँ इकबाल ने ऐसे लोगों को नाराज़गी का मौका फराहम किया। क़ियाम यूरोप के दौरान भी इकबाल की तबीयत पर तंज व मज़ाक का असर ग़ालिब रहा। वतन वापसी के बाद इब्तदाई दौर में सर शहाबुद्दीन पर इनकी फुफ्तियाँ या मदीर, अखबार वतन और सर जोगिंदर सिंह वगैरह से मुतलक इनके कई लतीफ़े मुसन्नफीन ने अपनी अपनी किताबों में नकल किए हैं। यह सिलसिला इनकी आखिरी उम्र तक कायम रहा, और इकबाल ने मरते दम तक ज़राफ़त को ना छोड़ा। बहरहाल यूरोप और वहाँ से वापसी के इब्तदाई अयाम में बिलखसूस मौलवियों से मुतलक इनका मजाक बाज़ औक़ात अमली सूरत भी इख्तियार कर लेता, जो यकीनन इनके इकबाल से शक्र और रंजी का सबब बनता। तालिब इल्मी के ज़माने में एक मौलवी साहब यूरोप की सियाहत करते हुए लंदन पहुंचे। आर्नल्ड इन दिनों लंदन यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर थे, इसलिए मौलवी साहब जो इन्हीं अलीगढ़ की निस्बत से जानते थे इनको मिलने आ गए। आर्नल्ड ने इकबाल से इनका तारफ़ करवाया और इकबाल को हुक्म दिया कि इन्हीं लंदन के तमाम काबिल दीद मकामात की सैर कराएं। इकबाल ने नहायत तनदही से मौलवी साहब को जगह जगह फिराया और शाम के करीब इन्हें किसी कवा खाना में ले गए। इस जगह चंद सतम पेशा लड़कियां भी मौजूद थीं। इकबाल के इशारे पर या खुद अपनी जोलानी तबा से वो मौलवी साहब के गिरद जमा हो गई। कोई इनको कवा पिलाने लगी, किसी ने इनकी नूरानी दाढ़ी को छुआ, और एक ने तो इनके रुखसारों पर अकीदत की चंद मोहरें भी जड़ दी। मौलवी साहब सख्त परेशान हुए, और जब इस मुसीबत से निजात मिली तो गुस्से से भरे हुए आर्नल्ड के पास पहुंचे और इकबाल की शिकायत की। आर्नल्ड सख्त नादम हुए और इकबाल से खफगी के लहजे में कहा, मौलवी साहब ऐसे बुजुर्ग को कवा खाने में ले जाते हुए तुम्हें शर्म ना आई? इकबाल ने नहायत मतानत से एक जवाब दिया, आपने खुद ही हुक्म दिया था कि लंदन के तमाम काबिल दीद मकामात की सैर करा दूँ। अगर मैं मौलवी साहब को सिर्फ महलात, अजायब घर और तारीखी अमारात ही दखला देता तो वह लंदन के मतलब सख्त गलतफहमी में मुतला रहते और हिंदुस्तान जाते हुए यक तरफा ख्याल लेकर जाते। लंदन की ज़िंदगी में कावा खाना नहायत अहम है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मौलवी साहब को तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा दूँ। मिर्ज़ा जलालुद्दीन इसी सिलसिला में एक और वाक़े का जिक्र करते हुए तहरीर करते हैं। एक मरतबा हम मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज़ से लखनऊ गए। इजलास के अयाम में इस एक शाम ऐसी भी थी कि हम फारग थे। इकबाल की तबीयत जब बेकारी से घबराने लगी तो वो मुझसे फरमाने लगे, चलो कहीं चलकर घड़ी दो घड़ी गाना ही सुन लाएं। मैं पहले तो आमादा हो गया, मगर बाद में किसी अचानक काम की वजह से रुक गया। वो चल खड़े हुए कोई घंटे भर के बाद जब मैं वापस लौटे तो मुस्करा रहे थे, कहने लगे, लो आज तुम्हें तमाशा दिखाएं। मैंने इस तजाब के आलम दरियाफ़ किया, आखिर हुआ क्या है? फरमाने लगे, होना क्या था, बस एक मौलवी साहब को आज हमने पकड़ लिया जिस तवाइफ के हाँ हम गाना सुनने गए थे, वहीं कहीं इस कॉन्फ्रेंस के मदोबीन में से एक मौलवी साहब भी हमारे साथ जाने से कबल दिल बहरा रहे थे, मगर आप जब वहाँ से चपत हुए तो अपनी बुकलाट के आलम में कॉन्फ्रेंस का दावती रुका वहीं फेंक आए थे। हम पहुँचे तो तवाइफ ने हमसे कहा, जिस तरह भी हो हम मौलवी साहब को तलाश करके इनकी अमानत व हफाजत इन तक पहुंचा दें, मगर हमने ये सोचा है कि ये रुका नवाब वकारुल मुल्क बहादुर सदर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ही की मार्फत क्यों ना लुटाएं, ताकि जाब्ते की पाबंदी भी मलहूज रहे और नवाब बहादुर भी देख लें कि दुनिया भली से भली है। इतना कहकर इकबाल ने कागज़ का तख्ता निकाला और कलम पकड़कर नवाब साहब के नाम तवाइफ की तरफ से एक मुफसल खत लिख डाला। इसमें शाम के वाक़े की तमाम तफसील बेकम व कास्त बयान करने के बाद लिखा कि चूँकि बंदी किबला मौलवी साहब के पते से वाकफ़ नहीं, इसलिए आपसे इल्तमास करती है कि इनका खोज निकाल कर इनके कागजात इन तक पहुँचा दें। इस खत की भिनक मौलवी साहब के कान में भी पड़ गई और वो हामते हामते इकबाल के पास आया और लगे बेतरा मिनस खुशामद करने और इनकी जान व माल को दुआएं देने, मगर इकबाल तो गोया इसी वक्त के इंतज़ार में थे। अब आए हो तो जाते कहाँ हो कि मसादक इन्होंने हजरत को वो रगीदा दिया। सफ़ा नंबर 364 के बस अल्लाह दे और बंदा लेना जाने आपने नाक से कितनी लकीरें खींची तब आपकी जान छूटी। इकबाल को बचपन ही से गाने का बहुत शौक था और रागों के अलाप से शनासाफ थे। लाहौर में तालिब इल्मी के ज़माने में मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया और फिर 5 साल मुलाजमत के दौरान अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसों में तरन्नम के साथ अपनी नज़में पढ़ने लगे। सितार खरीद ली और इसे बजाने की मशक किया करते। रफ्ता रफ्ता जब इनका तारफ शहर के बाज़ौक रुसा से हुआ तो इनके रक्स व सरूर की महफिलों में वो भी बुलाए जाने लगे। 1904 में मोहम्मद बिन फौक ने एक किताब बानवान याद रफ्तगान शाया की, जो दरअसल हिंदू और मुस्लिम सूफिया का तज़किरा था। इसमें यह बहस की गई थी कि राग व सरूर व समा जायज़ है या नहीं, अगर जायज़ है तो किन सूरतों में, राग सुनने और सुनाने वाले किस किस्म के लोग होने चाहिए, गाना किस मौजू पर और हाज़रीन मजलस के अदात व खसाइल कैसे होने चाहिए। इन्होंने इकबाल के इस शेर पर बहस ख़त्म की। लोग कहते हैं मुझे राग को छोड़ो इकबाल, राग है दीन मेरा, राग है ईमान मेरा। सो इस ज़माने में राग रंग इनका दीन और ईमान था। ये इनकी जवानी के अयाम थे, शायरी के मैदान में नए नए तजर्बे करते थे और बाहसियत शायर हुसन पसंदी इनकी फितरत का हिस्सा थी। जिस तरह मनाजर फितरत की दिलकशी इनके तवज्जो का मरकज बनती, इसी तरह नस्वानी हुसन से भी मुतासर हुए बगैर ना रहते। 1903 में इनके बचपन के दोस्त सैयद तकी शाह के नाम एक खत में अमीर का जिक्र मिलता है। लिखते हैं, अमीर कहाँ है, खुदा के लिए वहाँ ज़रूर जाया करें, मुझे बहुत अजतराब है, खुदा जाने इसमें क्या राज है, जितना दूर हो रहा हूँ इतना ही इससे करीब हो रहा हूँ। सफ़ा नंबर 365। राकम की तहकीक के मुताबिक अमीर बेगम का तल्लक गोतवाइफों के एक घराने से था, लेकिन वो और इस ख़ानदान की दीगर ख्वातीन तायब हो चुकी थी। इस ख़ानदान की बात ख़वातीन अपने हुस्न जमाल के साथ उर्दू और फारसी अदब से गहरे शफ़ के सबब मशहूर थी और इनमें से चंद एक की शादियाँ लाहौर की मुअज्जज़ शख्सियात से हुईं। अमीर बेगम उर्दू और फारसी के उस्ताज़ा के कलाम से शनासा होने के अलावा खुद भी शेर कहती थी, नहायत फसी व बलगी उर्दू में बातचीत करती। इस वजह से इकबाल इनसे बेहद मुतासर थे। यूरोप में क़याम के दौरान इकबाल एक नए तमद्दन और इस अतबार से जहन व कलब के बाद नए तकाज़ों से आशना हुए। यूरोप की मखलूत मुआशरत में इन्हीं चंद ऐसी ख्वातीन मिली जो जिस्मानी हुसन के साथ साथ अदब व फलसफे से शासनाई के सबब इकबाल के लिए और भी पुरकशिश थी। यूरोपी ख्वातीन के अलावा अतिया फयाजी जैसी हाजर दिमाग बाज मशर की ख्वातीन से भी मुतारफ हुए अतालवी बैरोनस से, जिसका जिक्र अतिया फयाजी के नाम एक खत में मिलता है। इकबाल की मुलाकात गलबन लंदन में हुई थी। ये अतालवी बैरोनस इन लोगों में से एक थी जिन्होंने सफ़र अतालिया के दौरान इकबाल की मुलाकात फाशी आमर मैसोलिनी से कराई और रूम में इकबाल के इस्तकबाल के लिए एक दावत का एहतमाम भी किया, जिसमें इकबाल की ख्वाहिश पर इन्हीं रूम की हसीन तरीन ख्वातीन से मिलवाया। यूरोप से वापसी के बाद जब तक वो तनहा रहे, मिर्ज़ा जलालुद्दीन की रुक्स व सरूर की महफिलों में शरीक होते थे, लेकिन इकबाल की ये ज़िंदगी 1913 में ख़त्म होगी। अलबत्ता गाना सुनने का शौक़ इन्हीं आखिर उम्र तक रहा। दिल्ली जाते हुए तो ख्वाजा हसन निज़ामी इनके लिए कव्वाली की महफिल लगाते, जो इन्हें बेहद पसंद थी। अनारकली वाले मकान में रहाइश के दौरान इकबाल को अपने एक रिश्तेदार के लाउबालीपन के सबब परेशानी का सामना करना पड़ा। गलबन 1915 में इनका एक भांजा इसी मकान में अकामत पजीर हुआ। गर्मियों की तातीलात में इकबाल हसबे ममूर अपनी बेगमात के हमरा सियालकोट गए हुए थे और भांजा घर में अकेला था। वह बाजार हुसन से एक हिंदू लड़की की इल्तजाओं से इस कदर मुतासर हुआ कि इसे गुना आलूद ज़िंदगी से निजात दिलाने के लिए घर ले आया और इससे निकाह पढ़वा कर अपने साथ ठहरा लिया। लड़की के सरपरस्तों ने इकबाल के भांजे के खिलाफ अगवा की रपट पुलिस में लिखवा दी। तातीलात के अख्ताम पर जब इकबाल वापस लाहौर पहुंचे तो पुलिस लड़की को बरामद करने के लिए इनके मकान पर पहुंच गई। भांजे ने लड़की को कोठे पर कबूतरों के डरबे में छुपा रखा था। बहरहाल लड़की के बयान से फैसला तो भांजे ही के हक में हो गया, लेकिन इकबाल बहुत भ्रम हुए और भांजे को इसकी बीवी समेत घर से निकाल जाने का हुक्म दे दिया और फिर सारी उम्र इसकी सूरत तक देखने के रवादार ना हुए। राकम के ख्याल में इस पस मंजर की रोशनी में इकबाल के खिलाफ अल्जामात का जायजा बेहतर तौर पर लिया जा सकता है। जहाँ तक मैं रोशी की तोहमत का तल्लक है, तहकीक के बावजूद ऐसी कोई मौसर शहादत नहीं जिससे ये इल्ज़ाम साबित हो सके। लाहौर में इकबाल के तालब इल्मी के अहद में गुलाम बेग नरेंग ने इन हालात कलम बंद किए, लेकिन इनमें शराब नोशी का कहीं जिक्र नहीं मिलता। इसके अलावा इन अयाम में इकबाल के वसाइल भी महदूद थे, क्योंकि अपने तलीमी अखराजात के लिए वह बड़े भाई के दस्ते नगर थे। इब्तदाई 5 साल दौरे मुलाजमत से मुतल्लक सैयद तकी शाह सर अब्दुल कादर और मोहम्मद बिन फौक के बयानात या तहरीरों में इकबाल के मिखोरी का कोई जिक्र नहीं मिलता। क्याम यूरोप के दौरान सर अब्दुल कादर और अतिया फयाजी का इकबाल से खासा मेल जोल था। राकम के रवाबत अतिया फ़ियाज़ी के साथ इनकी वफ़ात तक कायम रही और कराची में कई बार इनसे मुलाकातें हुईं। इस सिलसिले में रकम के इस्तफार पर अतिया फ़ियाज़ी ने बताया कि इन्होंने यूरोप में किसी मौके पर भी इकबाल को शराब पीते नहीं देखा। यूरोप से वापसी पर मौलवी अहमद दीन और नवाब सर जुल्फ़िकार अली खान ने, जो मिर्ज़ा जलालुद्दीन की तरह इकबाल के बेतकल्लफ़ दोस्तों में से थे, इनके सवाने हयात लिखे, लेकिन कहीं भी इन्होंने इकबाल की मैखोरी का जिक्र नहीं किया। मिर्ज़ा जलालुद्दीन ने इकबाल से मुतलक अपने बयानात में रुख्स सरूर की महफिलों में इनके शरीक होने या किसी मगनीना के बाला खाने पर जाकर गाना सुनने का तज़्किरा तो ज़रूर किया है, मगर मैं नोशी का जिक्र नहीं करते। राकम की खतो किताबत इकबाल के इस दौर के एक और बेतकल्लफ दोस्त सरदार मराव सिंह शेर गुल से भी रही है। वो भी यही तहरीर करते हैं कि इकबाल ने इनके सामने कभी शराब नहीं पी थी। इकबाल किसी मुकदमे के सिलसिला में गलबन 1912 में कैम्बलपुर गए। वहाँ इनके एक और वकील दोस्त ने दावत का एहतमाम किया, जिसमें चंद मुकामी अंग्रेज़ हकाम भी मौजूद थे और शराब का बंदोबस्त भी किया गया था। इस दावत में 13.5 साल शेख इजाज अहमद मौजूद थे, जो इन दिनों अपने वालद के पास कैम्बलपुर गए हुए थे और जिन्हें इकबाल अपने साथ इस दावत में ले गए थे। इनके बयान के मुताबिक जब इकबाल को इनके दोस्त ने शराब का जाम पेश किया और पीने पर इसरार किया, तो उन्होंने फरमाया कि जिस शेख को मैंने यूरोप में रहकर कभी मुंह ना लगाया, इसे अब क्या पीऊँगा। अनारकली वाले मकान या मैकलोड रोड वाली कोठी में इकबाल की दो भतीजियाँ भी इनके साथ रहती थीं, जो यहीं जवान हुई। इनमें से एक का हल्फिया बयान है कि इकबाल ने इनके सामने शराब कभी चखी तक ना थी और एक ही घर में रहते हुए इनके मुशाहदे में या सुनने में कभी कोई वाकया ऐसा नहीं आया जिससे ये शुबा हो कि वो शराब का शौक करते थे। इकबाल के जवान साल अकीदतमंदों में से एक ख्वाजा अब्दुल वहीद थे, जो इकबाल की यूरोप से वापसी के फौरन बाद से इन्हीं जानते थे और उम्र आखिर तक इनके इरादत मंद रहे। वो अपने मजमून मेरी ज़ाती डायरी में जिक्र इकबाल में तहरीर करते हैं कि इन्होंने इकबाल को शुरू से लेकर इनकी वफात तक तकरीबन 30 बरस हुक्का पीते तो देखा, लेकिन कभी ये ना सुना कि इन्होंने इस सारे अरसे में शराब को हाथ लगाया। इसी तरह जवेद मंजिल में क्याम के दौरान में जहां राकम सन तमीज़ तक पहुंचा, इकबाल को इसने कभी शराब पीते नहीं देखा था। बल्कि राकम इस सिलसिले में अली बख्श से इकबाल की बरहमी के एक वाक्य का शाहिद है। वाक्य कुछ इस तरह है कि 1938 के अवायल में एक दिन कोई सिख इकबाल से मिलने के लिए आया। इस वक्त इकबाल के पास एक अरब कारी भी बैठे हुए थे, जो इन्हीं उम्र के आखिरी एजाम में कुरान मजीद खुश अलहानी से पढ़कर सुनाया करते थे। अली बख्श ने सिख को अकीदतमंद समझते हुए इकबाल तक पहुँचा दिया। कुछ देर वो इनके साथ बातें करता रहा, फिर कमरे से निकल कर बाहर आया और अली बख्श से कहा कि तांगे में रखी हुई बोतल और गिलास इसे ला दे। अली बख्श ने हुक्म की तमील की और सिख बरामदे में कुर्सी के सामने मेज़ लगाकर बैठ गया और बेधड़क शराब पीने में मसरूफ़ हो गया। 20-25 मिनट गुजरने पर इकबाल ने अली बख्श को बुलवाकर पूछा, क्या सरदार साहब चले गए हैं। अली बख्श ने जवाब दिया कि नहीं, वो तो बरामदे में बैठे शराब पी रहे हैं। इस पर इकबाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बीमारी की हालत में बनियान और धोती पहने वो यकदम बिस्तर से उठे और बाहर निकल पड़े। अरब कारी भी इनके पीछे भागा। इकबाल ने आते ही सिख को गिरेबान से पकड़ने की कोशिश की और इसी कशमकश में शराब की बोतल फर्श पर गिर कर चिकना चूर होगी। घर में शोर सुनकर राकम भी भागता हुआ मौके पर पहुंचा। सिख इन्हीं इंतहाई गुस्से की हालत में देखकर भाग खड़ा हुआ और तांगे में सवार होकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन इकबाल गुस्से से कांप रहे थे और अरब कारी ने इन्हीं थाम रखा था। राकम ने इन्हीं जिंदगी में पहली बार अली बख्श को झिड़कियाँ देते हुए सुना। बरामदे के सारे फर्श को इसी वक्त धुलवाया गया और इकबाल ने 2-3 रोज तक अली बख्श से बात ना की, बल्कि इसे इनके आमने सामने आने की इजाज़त ना थी। बिलाखर चौधरी मोहम्मद सैन की कोशिशों से इसे माफ़ी मिली। इकबाल के बाद अकीदतमंद शायद जिनमें सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सम और अब्दुल मजीद सालक भी थे, ये ख्याल जाहिर करते हैं कि इकबाल ने शायद किसी ज़माने में मैं पी हो, बाद में बहरहाल छोड़ दी। इस मफरूज़े की तायद में इकबाल के अपने इतराफ़ पर मबनी वो अशार पेश किए जाते हैं जो रमूज़ बेखुदी के आखिर में हुज़ूर रहमतुल आलमीन में अर्ज हाल करते हुए उन्होंने तहरीर किया। मदते बा ला इला रवा सा ख़त्म, इशक बा मरगुल्ला मोया बा ख़त्म, बादा हा बा मा सिया मा जदम, बर चराग अफियत दामा जदम, बरका हा रक्सीद गर्द हासल, रह जाना ब्रोइन का लाए दलम, ए शराब इस शीशा जानम ना रिख्त, ए जर सारा जा दामन ना रिख्त। ये दुरुस्त है कि किसी शायर के मुशाहदात कल्बी व अरावत या ذاتی جذبات کی ترجمانی بعض اوقات اس کے اشعار کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے، بشرطیہ وہ واقعاتی شہادت سے مطابقت رکھتے ہوں، مگر واقعاتی شہادت کے برعکس محض اشعار کے حوالے سے کسی حقیقت کو ثابت کرنا صحیح نتائج تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر صرف اشعار کے حوالے سے یہ ثابت کرنا مقصود ہو کہ شاعر میش سے شفق رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے حافظ ریاض، خیر آبادی اور دیگر کئی شعرا کو بھی جن کی عملی زندگیاں صوفیہ کی زندگیوں کی طرح تھیں اور جنہوں نے میں کو کبھی چھوا تک نہ تھا، لیکن جن کے دو اویان خرابات کے تذکرے سے اٹے پڑے تھے، میں خاروں کے زمرے میں شامل کرنا پڑے گا۔ اقبال کے یہ عقیدت مند اپنے متعلق یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اقبال کے ہم نشین تھے، اور اقبال نے ان کے روبرو اپنی لغزشوں کو چھپانے کی کبھی کوشش نہیں تھی، لیکن بقول محمد دین تاثیر اقبال تو ایک چشمہ شیرین تھا، مورو ملک کا قافلہ آتا جاتا رہتا، اس لیے علاقوں کے نزدیک ان سب کا شمار اقبال کے عقیدت مندوں میں سے ہو تو ہو، ان کے بے تکلف دوستوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنی کم عمری کے سبب وہ اقبال کی ابتدائی زندگی میں ان سے متعارف نہ ہو پائے۔ ویسے بھی اپنے نیاز مندوں کے سامنے اقبال کی اپنی ابتدائی لغزشوں کا یوں اعتراف کر لینے کی دلیل قیاس معلوم نہیں ہوتی، خصوصاً جب اسی زمرے میں شامل اقبال کے ایک اور قابل اعتماد عقیدت مند سید نذیر نیازی اس کی پرزور تردید کرتے ہوں۔ اقبال سے متعلق دوسرا الزام کہ وہ عیاش تھے، غالباً اس لیے لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے ابتدائی زمانہ میں رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، بلکہ گانا سننے کے شوق میں کبھی کبھار کسی مغنینہ کے بالا خانے پر بھی چلے جاتے تھے، مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ وہ عیاش تھے یا بقول عبدالمجید سالک رنگ لیاں مناتے تھے کسی طرح درست نہیں۔ مالی اعتبار سے اقبال کبھی بھی ایسی پوزیشن میں نہ ہوئے کہ عیاشی کر سکیں یا رنگ رلیاں منا سکیں۔ اس زمانے میں بعض تحفے شاقین کو اردو اور فارسی استاذہ کا کلام بھی سنایا کرتی تھی، اور چونکہ ایسی محفلوں میں ثقافتی پہلو نمایاں ہوتا تھا، اس لیے ان میں شرفا روسائی یا اہل ذوق کا شریک ہونا کوئی آر نہ سمجھا جاتا تھا۔ اقبال کی پہلی شادی کے موقع پر گجرات میں بھی اسی قسم کی محفل کا اہتمام کیا گیا تھا، اور بزرگوں نے جن میں سید میر حسن اور اقبال کے والد بھی شامل تھے، ایک بند کمرے میں اساتذہ اور حافظ کا کلام سنا تھا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں تفریح کا کوئی اور سامان نہ تھا، بمبئی کی چند تھیٹر کمپنیاں تھیں جو لاہور آ کر آگاہ حشر کشمیری کے ڈرامے پیش کرتی تھیں، اور اقبال ان کے ڈرامے دیکھنے بھی جاتے، لیکن ایسے مواقع کبھی کبھار ملتے تھے۔ مرزا جلال الدین اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، سارا دن عدالتوں میں مشغافیوں میں بسر ہو جاتا تھا، رات کے وقت دیر گئے تک مقدمات کی تیاری کے مشاغل درپیش رہتے، اور دن چڑھتے ہی اس سر نواسنو اسی دماغی کاوش میں الجھنا پڑتا، اسی مسلسل انہماک سے قومی مخمل ہو جاتے، اور دماغ کے نچڑ جانے سے روح پر افسودگی سی چھانے لگتی، چنانچہ طبیعت میں تعداد ہونے کی خواہش پیدا ہوتی اور دل فراغت کے لمحات کے لیے بے چین ہو جاتا۔ اس پر ہم چند دوست زندگی کے پریشان کرنے والے ہنگاموں سے ہٹ کر خوش وقتی کے لیے ایک مختصر سی بزم قائم کرتے، اور اس کی دل کشیوں میں اپنے تھکے ہوئے دماغوں کو تازہ دم کرتے۔ اقبال سے بعد کی آنے والی نسل کے چند نقاد دان اقبال میں انفرادی تجسس کے تحت یا شاید جدت کے تحریر کے خیال سے ایک نیا رجحان یہ پیدا ہوا ہے کہ اقبال کی شخصیت کا تجزیہ یا ان کی حیات معاشقہ کی ترتیب وہ ان کے اشعار و مکتوبات کے حوالے سے نہ کرنے لگے۔ محمد عثمان کی رائے میں متذکرہ دور میں اقبال نے بہت سی نظمیں خود اپنے ہاتھوں تلف کر ڈالیں، اور اس لیے تلف کی کہ ان کی نوعیت حد درجہ پرائیویٹ تھی، ان کے نزدیک جو نظمیں تلف ہونے سے بچ گئیں، مثلا وصال، حسن و عشق، نوائے غم، پھول کا تحفہ عطا ہونے پر وغیرہ کا اگر بنظر غور مطالعہ کیا جائے، تو اس حقیقت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ اس دور میں اقبال کا اضطراب دراصل ایک ناکام محبت یا تشنع محبت دل کا اضطراب ہے، اور اس بات کی تائید عطیہ فیاضی کے نام ان کے خطوط بھی دبی زبان میں کرتے ہیں۔ محمد عثمان ان چند نظموں اور عطیہ فیاضی کے نام اقبال کے خطوط کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اقبال کو انسان کا عشق ہو سکتا تھا، اور واقعتاً انہی ایک انسان یعنی عطیہ فیاضی سے یہ تعلق خاطر پیدا ہوا، اس لیے اقبال انہی اپنی رفیقہ حیات بنانا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کے خاندان کے عام اور سادہ رہن سہن میں کسی ایسی خاتون کا کھپ جانا انہیں یقیناً ناممکن نظر آتا ہوگا۔ نیز ان کی اپنی مالی حالت اور معاشرتی حیثیت نہ تسلی بخش اور غیر مستحکم تھی، چنانچہ ان کی دنیا دارانہ جدوجہد کا ابھی آغاز ہوا تھا، اس بنا پر بھی وہ انہیں اپنانے میں چکاتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ گو وہ عطیہ فیاضی جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کی ذہنی ترقی و کمال کی قدر کر سکتے تھے، لیکن ایسی خاتون بل عموم جس قسم کی آزادی کو اپنا حق سمجھتی ہے اس کی ادائیگی کی گنجائش اقبال کے اخلاقی تصور میں ہرگز نہ تھی۔ چنانچہ یہ محبت ناکام رہی۔ مسعود الحسن اقبال پر اپنی تصنیف میں تحریر کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اور عطیہ فیاضی کے درمیان 1907 تا 1908 میں سمجھوتا ہو چکا تھا کہ وہ آپس میں شادی کریں گے۔ ہندوستان واپس آ کر عطیہ فیاضی نے اپنے خطوط میں جنجیرہ آنے کے لیے اس لیے بار بار کہتی تھی کہ رشتے کی بات پکی ہو جائے، مگر اقبال جنجیرہ نہ گیا، لہٰذا یہ معاشقہ تھوڑی مدت تک ہی چلا اور دسمبر 1911 میں ختم ہو گیا۔ 1912 میں عطیہ فیاضی کی شادی فیضی رحمین سے ہوگی۔ بعد میں 1933 میں اقبال کی ان سے پھر خط و خطابت ہوئی، لیکن ان کی نویت محض رسمی تھی۔ خالد نذیر صوفی کے رائے میں عام طور پر عطیہ فیاضی کے نام اقبال کے خطوط کو بنیاد بنا کر عجیب و غریب اور مضحکہ خیز مفروضے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان خطوط میں عطیہ فیاضی سے متعلق بعض ریمارکس یہ چگلی ضرور کھاتے ہیں کہ وہ اقبال کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند تھی، مگر اقبال نے کبھی ان کا نوٹس نہیں لیا۔ اقبال انہیں ایک علمی دوست کی حیثیت سے تو پسند کر سکتے تھے، لیکن بیوی کے روپ میں وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ اس بنا پر وہ خنجیرہ آنے کی متعدد دعوتوں کے باوجود وہاں نہ گئے۔ البتہ 1931 میں عطیہ فیاضی کی شادی کے کافی عرصے بعد ان کی دعوت کو انہوں نے شرف قبولیت بخشا اور ممبئی میں ان کے دولت قدا ایوان رفت میں ان سے ملنے گئے۔ راکم اس معاملے میں تبصرہ کرنے والوں کی آرا کی مقولیت یا نامقولیت پر اس لیے بحث کرنا نہیں چاہتا کہ وہ محض قیاس آرائیوں پر مبنی اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ سے واپسی پر اقبال مالی مشکلات اور ازواجی زندگی کی بے سکونی کے سبب کرب و اضطراب کی ایک ایسی کیفیت سے گزرے تھے جس پر غالب آنے کے لیے نہیں وقتی طور پر کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، اور یہ سہارا کوئی ایسی ہستی ہی فراہم کر سکتی تھی جو ان کی یورپ میں فراغت کی مختصر زندگی کی دلتش یادوں کا جز ہو۔ پس عطیہ فیاضی جیسی حاضر دماغ خاتون یا ایما ویگے نس جیسی حساس شخصیت نے اپنی ہمدردانہ توجہ کے ذریعے انہیں مطلوبہ سہارا مہیا کر دیا، لیکن یہ کہنا کہ وہ محبت کی بنا پر واقعی عطیہ فیاضی کو اپنی رفیقہ حیات بنانا چاہتے تھے یا اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر یورپ یا خصوصی طور پر جرمنی میں اپنا گھر بسانے کا ارادہ رکھتے تھے درست نہیں۔ البتہ بے چینی کے اس دور میں جیسا کہ ان کے بعض خطوط سے ظاہر ہے، ایسے خیالات ان کے ذہن میں ضرور ابھرتے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اقبال کی بعض یورپی نظمیں یا دوسری چند نظمیں جو واپس آ کر لکھی گئیں ذاتی اور واقعاتی نوعیت کی تھیں اور جرمن رومانوی ادب کے مطالعے کے زیر اثر تحریر کی گئی تھی۔ اس طرح سے چند ایک نامکمل نظمیں قیام یورپ کے زمانے میں بھی ان کی بیاض میں درج ہیں، جو بیاض اب علامہ اقبال میوزیم میں محفوظ ہے۔